शुरुआती नरेशन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी कहानी जितनी दिलचस्प है उतने ही क्रांतिकारी उनके विचार भी हैं। नाम है लिव वाइगोत्स्की, सोवियत मनोवैज्ञानिक जिनका जीवन काफी उथल पुथल धरा रहा और सिर्फ 37 साल का, 1896 से 1934 तक। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक आदमी जिसके काम को उसी के देश ने मतलब सालों तक दबाए रखा, वो आज भी दुनिया भर की क्लासरूम को, हमारे सीखने के तरीकों को और यहाँ तक कि हमारी सोच को कैसे प्रभावित कर रहा है। आखिर क्या राज है वाइगोत्स्की के विचारों में? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, वाइगोत्स्की की कहानी वाकई असाधारण है। उनका महत्व इसलिए नहीं कि वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मानव मन को समझने का एक बिल्कुल कह सकते नया नज़रिया दिया। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग, हमारी सोच, ये अकेले में नहीं पनपती, ये तो समाज, संस्कृति और हाँ, भाषा की देन है। और ये विचार आज करीब एक सदी बाद भी, मतलब शिक्षा से लेके मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान तक, हर जगह गूंज रहे हैं।
अच्छा, मतलब इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ये तो हम सुनते ही आए हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे एक तरह से वैज्ञानिक आधार दिया कि समाज असल में हमारी सोच बनाता कैसे है। तो फिर शुरुआत उनके दौर से करते हैं। कैसा था वो रूस जिसमें वाइगोत्स्की सोच रहे थे, लिख रहे थे?
वाइगोत्स्की का जीवन एक बेहद नाटकीय दौर का गवाह रहा। आप सोचिए, जार का शासन खत्म हो रहा है, फिर 1917 की बोल्शेविक क्रांति रूस को पूरी तरह झकझोर देती है, और फिर सोवियत संघ का जन्म होता है। मतलब एक उथल पुथल, उम्मीदों और हाँ, अनिश्चितताओं से भरा समय। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये एक नए सोवियत मानव को गढ़ने का एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग भी था। एक ऐसा इंसान जो नए समाजवादी समाज के आदर्शों पर खरा उतरे।
और जाहिर है, इस नए मानव को गढ़ने के सपने ने मनोविज्ञान जैसे विषयों को अचानक बहुत महत्वपूर्ण बना दिया होगा। मतलब उन्हें लगा होगा कि मनोविज्ञान के जरिए इंसान को बदला जा सकता है।
हाँ हाँ बिल्कुल, मनोविज्ञान को अचानक एक नई पहचान मिली, एक तात्कालिकता मिली। उसे सिर्फ अकादमिक अध्ययन नहीं, बल्कि समाज को बदलने का एक शक्तिशाली औजार माना जाने लगा। वाइगोत्स्की इसी माहौल में सामने आए। उन्होंने मार्क्सवादी विचारों से प्रेरणा ली और एक ऐसा मनोविज्ञान बनाने का बीड़ा उठाया जो बता सके कि चेतना कैसे बनती है और कैसे बदली जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि 1920 का दशक रूस में कला और विज्ञान में बड़े मतलब कट्टरपंथी प्रयोगों का भी समय था, तो वाइगोत्स्की का काम उस दौर की बौद्धिक ऊर्जा से भरा हुआ था।
उस समय के दूसरे बड़े मनोवैज्ञानिक जैसे स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे, वो तो बच्चों के विकास को अलग तरह से देख रहे थे, है ना? अब वाइगोत्स्की का उनसे क्या मतलब, क्या मतभेद था?
सही कहा, पियाजे जो उस समय बहुत प्रभावशाली थे, वो मानते थे कि बच्चा दुनिया को अपने आप, अपनी समझ के अलग अलग चरणों, स्टेजेस के हिसाब से सीखता है। विकास जैसे अंदर से बाहर की तरफ होता है। वाइगोत्स्की ने इस व्यक्तिवादी मॉडल को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि नहीं, असली कहानी तो सामाजिक संपर्क में है। सीखना और विकास बाहर से अंदर की तरफ होता है, मतलब समाज, संस्कृति और दूसरों की मदद से व्यक्ति की सोच विकसित होती है। ये उस समय एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार था।
और वो अकेले नहीं थे, शायद आपने ट्रोइका का जिक्र किया था।
हाँ, वो अकेले नहीं थे। अलेक्जेंडर लोरिया और अलेक्से लियोन्टिफ के साथ उनकी जोड़ी, जिसे वाइगोत्स्की लोरिया लियोन्टिफ ट्रोइका कहते हैं, वो उस दौर के सोवियत मनोविज्ञान की धुरी बन गई। उन्होंने मिलकर काम किया, विचारों को तराशा।
तो इस उथल पुथल भरे माहौल और इन क्रांतिकारी विचारों वाले वाइगोत्स्की का बचपन कैसा था? कहाँ से आए थे वे? क्या पृष्ठभूमि थी?
उनका जन्म हुआ था 1896 में बेलारूस के ओर्शा शहर में, एक पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में। बचपन उनका गोमेल शहर में बीता। परिवार का माहौल काफी बौद्धिक था, मतलब घर में साहित्य, दर्शन, राजनीति पर खूब बातें होती थीं। पिता बैंक मैनेजर थे और माँ भी काफी सुशिक्षित थीं। कहते हैं बचपन से ही वे बहुत जिज्ञासु थे और बहस करने में माहिर।
तभी तो उन्हें बचपन में छोटे प्रोफेसर बुलाते थे। ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। और उनकी पढ़ाई, वो भी पारंपरिक तरीके से नहीं हुई थी शायद?
हाँ, ये सही है। शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई, एक निजी ट्यूटर थे सोलोमन एशपिज, उनसे, और उन्होंने उन्हें सुकराती पद्धति सिखाई, मतलब सवाल जवाब के जरिए सीखना। ये तरीका शायद उनकी बाद की सोच पर भी असर डाला होगा। उन्होंने खुद से भी बहुत पढ़ा, लेकिन यूनिवर्सिटी पहुंचना आसान नहीं था। उस वक्त रूस में यहूदी छात्रों के दाखिले पर कोटा लगा था, जिसे न्यूमरस क्लॉसेस कहते थे। उन्हें 1913 में मॉस्को यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला मिला, लेकिन लॉटरी से। सोचिए, किस्मत का खेल।
डिग्री तो कानून की ली, लेकिन साथ ही वो एक और यूनिवर्सिटी थी, शेनावस्की पीपल्स यूनिवर्सिटी। वहां वो अनौपचारिक रूप से अपनी पसंद के विषय पढ़ते रहे, जैसे दर्शन, इतिहास, साहित्य, कला, मनोविज्ञान। फिर 1917 में, जिस साल क्रांति हुई, वे ग्रेजुएट होकर गोमेल लौटे और वहां उन्होंने पढ़ाना शुरू किया साहित्य और मनोविज्ञान। यही उन्होंने एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भी खोली और साहित्य आलोचना पर भी काम किया। तो मतलब शुरुआत से ही उनके काम में कई धाराएं मिलती दिखती हैं।
और यही शायद उनके सबसे बड़े योगदान, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशो कल्चरल थ्योरी कहते हैं, उसकी बुनियाद बनी। ये सिद्धांत आखिर कहता क्या है, अगर आसान शब्दों में समझे?
आसान शब्दों में कहें तो वाइगोत्स्की का मूल मंत्र था, हमारा मन अकेले काम नहीं करता। हमारी जो ऊंची मानसिक क्षमताएं हैं, जैसे ध्यान लगाना, सोच समझ कर याद रखना, अमूर्त चीजों के बारे में सोचना, योजना बनाना, ये सब हमें जन्म से नहीं मिलती। ये समाज और संस्कृति की देन है।
अच्छा, तो ये क्षमताएं आती कहां से हैं फिर, अगर जन्मजात नहीं है तो?
वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्षमताएं हमें सामाजिक संपर्क के जरिए मिलती हैं, खास तौर पर मध्यस्थ गतिविधियों, मीडिएटेड एक्टिविटीज से। इसे ऐसे समझिए, हम दुनिया को सीधे सीधे नहीं जानते, बल्कि हमेशा किसी औजार या माध्यम के जरिए जानते हैं। ये औजार भौतिक भी हो सकते हैं, जैसे हथौड़ा या कंप्यूटर, लेकिन वाइगोत्स्की का जोर मनोवैज्ञानिक उपकरणों पर था।
मनोवैज्ञानिक उपकरण, ये क्या होते हैं? जैसे कोई मशीन?
नहीं, मशीन नहीं, ये वो सांस्कृतिक औजार हैं जो हमारी सोच को आकार देते हैं, उसे दिशा देते हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मनोवैज्ञानिक उपकरण है भाषा, लेकिन इसके अलावा गिनती करने के तरीके, नक्शे, लिखने की कला, याद रखने की तकनीकें जैसे गांठ बांधना या लिस्ट बनाना, कला, ये सब मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं। ये उपकरण हमें समाज से मिलते हैं और हमारी सोचने की शक्ति को आप कह सकती हैं कई गुना बढ़ा देते हैं। भाषा सिर्फ बात करने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का एक ढांचा है।
कमाल है, यानी भाषा हमारी सोच का सॉफ्टवेयर है एक तरह से, जो हमें समाज से मिलता है। और उन्होंने इन चीजों को समझने का कोई खास तरीका भी बताया, कोई मेथड?
हाँ, उन्होंने कहा कि किसी भी मानसिक प्रक्रिया को समझने के लिए उसे ठहराव में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके बनने और बदलने की प्रक्रिया में देखना चाहिए। इसे उन्होंने जेनेटिक मेथड कहा, यानी किसी चीज की जड़ तक जाओ, देखो वो कैसे पैदा हुई और कैसे विकसित हुई, बच्चे के विकास को देखो या इतिहास में देखो कि कोई विचार कैसे बदला।
और यहीं से उनका वो मशहूर आइडिया आता है, जिसके बारे में स्कूलों में पेरेंट्स के बीच काफी चर्चा होती है, ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, पर है क्या असल में ये?
हाँ, ZPD वाइगोत्स्की के सबसे प्रैक्टिकल और प्रभावशाली विचारों में से एक है। इसे ऐसे समझिए, हर सीखने वाले के पास दो स्तर होते हैं, एक वो काम जो वो अकेले बिना किसी मदद के कर सकता है, दूसरा वो काम जो वो किसी ज्यादा जानकार व्यक्ति जैसे टीचर, माता पिता, दोस्त या कोई सहपाठी की मदद से कर सकता है। इन दोनों स्तरों के बीच का जो दायरा है वही ZPD है।
अरे वाह, यानी ये वो जादुई जगह है जहां सीखना असल में होता है, जहां हम मदद से वो कर पाते हैं जो अकेले नहीं कर सकते।
बिल्कुल, ये वो संभावनाओं का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की ने कहा कि हमें बच्चे का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वो अकेले क्या कर सकता है, बल्कि इस आधार पर करना चाहिए कि वो मदद से क्या सीख सकता है। असली क्षमता इसी ZPD में दिखती है। इसने सीखने को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सीखना सिर्फ जानकारी रटना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं को विकसित करना है।
ये तो वाकई सीखने सिखाने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। अच्छा, इतने कम समय में वाइगोत्स्की ने लिखा भी तो बहुत कुछ होगा जिससे ये सारे विचार फैले। उनकी कौन सी किताबें खास मानी जाती हैं?
हाँ, बीमार रहने के बावजूद उन्होंने बहुत तेजी से काम किया, ये सच है। उनकी एक शुरुआती किताब है कला का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ये लिखी तो 1925 में गई थी, पर 26 सालों बाद। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि कला सिर्फ भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उन्हें बदलने और समझने का एक सामाजिक तरीका है। उन्होंने हैमलेट जैसे पात्रों का विश्लेषण भी किया इसमें।
और वो किताब जो शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है, विचार और भाषा।
हाँ, विचार और भाषा, थॉट एंड लैंग्वेज, ये 1934 में उनकी मृत्यु के तुरंत बाद छपी थी। ये उनकी मास्टरपीस मानी जाती है यकीनन। इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे बचपन में सोचना विचार और बोलना भाषा अलग अलग शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे जुड़ जाते हैं और मौखिक विचार वर्बल थॉट बनाते हैं, यानी हम भाषा के जरिए सोचते हैं और इसी से आंतरिक भाषण इनर स्पीच विकसित होता है, मतलब मन ही मन में खुद से बातें करना, जो हमारी प्लानिंग और समस्या समाधान का आधार है।
और पश्चिम में उनके विचार पहुंचाने में शायद माइंड इन सोसाइटी का बड़ा हाथ रहा।
जी हाँ, समाज में मन, माइंड इन सोसाइटी असल में उनके कुछ निबंधों का संग्रह है जो अंग्रेजी में 1978 में छपा। इसी किताब ने ZPD और मनोवैज्ञानिक उपकरणों जैसे विचारों को पश्चिमी दुनिया में कहना चाहिए लोकप्रिय बनाया। एक और गहरा काम है उनका, मनोविज्ञान में संकट का ऐतिहासिक अर्थ, द हिस्टोरिकल मीनिंग ऑफ द क्राइसिस इन साइकोलॉजी। इसमें उन्होंने उस समय के मनोविज्ञान के बड़ी स्कूलों जैसे व्यवहारवाद की कमियों को दिखाते हुए अपने सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण की वकालत की थी।
ये सब सुनकर हैरानी होती है कि इतने मौलिक विचारों वाले इंसान के काम को उनके अपने ही देश में, मतलब नजरअंदाज किया गया बल्कि दबाया गया, ये कैसे हुआ?
हाँ, ये वाइगोत्स्की की कहानी का एक दुखद मोड़ है। 1934 में टीबी से उनकी मौत के बाद सोवियत संघ में स्टालिन का दौर और सख्त होता गया। 1936 में एक सरकारी फरमान आया जिसने पेडोलॉजी यानी बच्चे का समग्र अध्ययन, जिसके वाइगोत्स्की बड़े पैरोकार थे, और उनके जैसे विचारों पर पूरी तरह रोक लगा दी। उनकी किताबों को हटा दिया गया, उनके नाम पर चर्चा बंद हो गई लगभग 20 साल तक। आप सोचिए, 20 साल तक उनके विचार सोवियत संघ में लगभग गायब ही रहे।
बाप रे, 20 साल! तो फिर वापसी कैसे हुई? कैसे उनके विचार दोबारा सामने आए और दुनिया भर में फैले?
1950 के दशक के आखिर में स्टालिन की मौत के बाद, जब सोवियत संघ में माहौल थोड़ा बदला, जिसे खुर्शेव थॉ कहते हैं, तब धीरे धीरे उनके काम को फिर से देखने समझने की इजाजत मिली। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 1960 और 70 के दशक में उनकी किताबों के अंग्रेजी अनुवाद पश्चिम में पहुंचे। वहां के शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने जैसे खजाना खोज लिया हो।
शुरुआत में पश्चिम ने उन्हें खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया है ना, जैसे वो स्कैफोल्डिंग का आइडिया।
बिल्कुल, शुरुआत में जुरुम ब्रूनर जैसे बड़े विद्वानों ने उनके ZPD के विचार को आगे बढ़ाया और स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब सीखने वाले को जरूरत के मुताबिक अस्थाई मदद देना, जैसे मकान बनाते समय मचान सहारा देता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन 1980 के दशक के बाद वाइगोत्स्की का असर सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। विकासात्मक मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, यहां तक कि कंप्यूटर साइंस में भी उनके विचारों का प्रभाव दिखने लगा। गतिविधि सिद्धांत, एक्टिविटी थ्योरी और सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान, कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी जैसे पूरे के पूरे अकेडमिक क्षेत्र उनके काम पर आधारित हैं।
और आज 21वीं सदी में वाइगोत्स्की कितने प्रासंगिक हैं? क्या उनके विचार आज भी हमारे काम आ रहे हैं?
हो, बहुत ज्यादा। आज हम जिन चीजों की बात करते हैं ना, जैसे क्लासरूम में बच्चों का मिलकर सीखना, जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं, या बच्चे की असली क्षमता जानने के लिए डायनामिक असेसमेंट, हर बच्चे को साथ लेकर चलने वाली इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करने वाला पढ़ाने का तरीका, कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागॉजी, एक से ज्यादा भाषाएं सीखने के फायदे, मल्टीलिंगुअलिज्म, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की की सोच की झलक साफ मिलती है। यहां तक कि ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल उपकरणों को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसमें भी उनके सिद्धांत मददगार साबित हो रहे हैं।
उनके कुछ कथन भी बहुत मशहूर हैं ना, जो उनके गहरे विचारों को बड़े सरल ढंग से सामने रखते हैं।
हाँ बिल्कुल, उनके उद्धरण उनके सिद्धांतों का सार पकड़ते हैं। जैसे एक है, दूसरों के माध्यम से हम स्वयं बनते हैं, थ्रू अदर्स वी बिकम आवरसेल्व्स। ये उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का निचोड़ है। हमारी पहचान, हमारा स्व अकेले में नहीं बल्कि दूसरों के साथ रिश्ते में बनता है।
और ZPD वाला कथन भी बहुत शक्तिशाली लगता है मुझे।
हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चा आज सहयोग से कर सकता है, वो कल अकेले कर सकेगा।
What a child can do today in cooperation, tomorrow he can do alone.
ये सीधे सीधे सीखने की प्रक्रिया को दिखाता है, कैसे जो मदद हमें बाहर से मिलती है वो धीरे धीरे हमारी अंदरूनी क्षमता बन जाती है।
भाषा की ताकत पर भी उन्होंने कुछ खास कहा था।
हाँ, विचार और भाषा में उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, एक शब्द मानव चेतना का एक सूक्ष्म जगत है।
A word is a microcosmos of human consciousness.
मतलब हर शब्द अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है, जिसमें अर्थ है, इतिहास है, संस्कृति है, सब कुछ समाया हुआ है। शब्द सिर्फ लेबल नहीं है, वे सोचने के शक्तिशाली औजार हैं।
सीखने की सामाजिक प्रकृति पर भी एक कथन था शायद।
सीखना विभिन्न आंतरिक विकासात्मक प्रक्रियाओं को जगाता है, जो केवल तभी संचालित हो सकती हैं जब बच्चा अपने पर्यावरण में लोगों और अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा हो। यह साफ करता है कि सीखना कोई अकेले कमरे में बैठकर रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह दूसरों के साथ बातचीत और गतिविधि से ही होता है।
वाइगोत्स्की के बारे में कुछ और रोचक बातें भी हैं, जैसे उनका असली नाम वाइगोत्स्की था और वो छोटे प्रोफेसर वाली बात, और हाँ, ये लॉटरी वाली बात तो कमाल की है ही।
हाँ, और ये भी कि उन्हें 1920s में ही पता चल गया था कि उन्हें टीवी है। ये जानकर शायद उनमें काम करने की एक अजीब सी मतलब अर्जेंसी आ गई थी। कहते हैं वे अक्सर बिस्तर पर लेटकर ही अपनी किताबें डिक्टेट करवाते थे, लिखवाते थे, मानो समय के खिलाफ दौड़ रहे हों।
और सबसे बड़ी विडंबना ये कि जीते जी उन्हें कोई बड़ा सम्मान या पहचान मिली नहीं, पहचान मिली मौत के कई दशकों बाद।
बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, उनके काम का असर फिल्मों या नाटकों में उतना नहीं दिखता जितना सीधे क्लासरूम के तरीकों में, थेरेपी की तकनीकों में, और यहाँ तक के हमारे डिजिटल लर्निंग ऐप्स के डिजाइन में दिखता है। उनके विचार वाकई दुनिया बदलने वाले साबित हुए हैं।
तो इस पूरी चर्चा के अंत में अगर हम सोचें तो वाइगोत्स्की से हम सबसे बड़ा सबक क्या ले सकते हैं आज के लिए?
मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक यह है कि हम सोचना और सीखना कभी अकेले में नहीं करते। हमारा मन, हमारी चेतना, समाज, संस्कृति और खासकर भाषा के ताने बाने से बुनी हुई है। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और इसी जुड़ाव में, इसी सामाजिकता में हमारी इंसानियत का विकास होता है।
ये आज के कनेक्टेड दुनिया के लिए कितना गहरा और जरूरी विचार है।
हाँ बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में, जहां हम स्मार्टफोन, ऐप्स, सोशल मीडिया से मतलब 2400 घंटे घिरे हैं, क्या ये सब हमारे नए मनोवैज्ञानिक उपकरण बन रहे हैं? और अगर हाँ, तो ये हमारी सोच, हमारे सीखने के तरीके और हमारे आपसी रिश्तों को कैसे बदल रहे हैं? क्या ये हमें ज्यादा काबिल बना रहे हैं या हमारी सोच को कहीं सीमित तो नहीं कर रहे? वाइगोत्स्की होते तो शायद आज इन्हीं सवालों से जूझ रहे होते। ये सोचने वाली बात है।
15, 12, 30 अंतिम नरेशन, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।